ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 2968। बच्चे जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहब भी कहा जाता है। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहबजादे भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम सच्चे साहब के बच्चे हैं। सच के ऊपर भी एक पोरी है, कहते हैं ना, सच खाना सच पहनना। बल्कि ये तो बातें मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु ये बाप बैठ समझाते हैं। और बच्चे जानते हैं कि ऊंचे ऊंचे की ही बाप है, जिसकी बहुत महिमा है। जिस बाप को रचयिता भी कहते हैं। अब ये तो समझाया गया है, पहले पहले है बच्चों की रचना, क्योंकि बाप के बच्चे हैं ना, और सभी आत्माएं बाप के साथ ही रहते हैं। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। ये दुनिया कोई स्वीट होम नहीं है। बच्चों को मालूम है वो हमारा स्वीटेस्ट बाप है, और स्वीट होम है शांतिधाम। फिर सतयुग में भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां घर में भी सुख शांति रहती है। यहां तो घर घर में भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। घर में लौकिक माँ बाप के पास रहते हैं तो भी अशांत है, तो दुनिया में भी अशांत है। और वहां तो घर में भी शांति, तो दुनिया में भी शांति। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे, और ये पुरानी दुनिया तो देखो कितनी बड़ी है। और ये नॉलेज बच्चों को ही मिलती है, बाहर वाले तो कुछ भी इन बातों को जानते ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग में आत्माएं भला शरीरधारी है तो भी वहां सुख शांति है। कोई हंगामा की बात नहीं है, क्योंकि वेद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। आशीर्वाद देते हैं ना, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, ये कोई आशीर्वाद देते नहीं है, देने की बात नहीं है। बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अभी तुम बच्चों की ये सभी बातें स्मृति में आई है, और बाप ने स्मृति दिलाई है। जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी याद करते हैं, सभी धर्म वाले याद करते हैं, कब याद करते हैं, जब दुनिया दुखों की दुनिया हो जाती है। ये है ही पतित पुरानी दुख की दुनिया, नई दुनिया में सुख होता है और पुरानी दुनिया में होता है दुख। नई दुनिया में अशांति का नाम निशान नहीं, और यहां तो है ही अशांति की दुनिया। अभी तुम बच्चों को तो पूरा गुणवान बनना है, अगर नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है, वो हिसाब किताब चुक तू करने वाला है। सभा बैठती है, सजाएं तो जरूर मिलनी है, जो भी पाप किए हैं उनकी सजाएं मिलेंगी, जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वो थोड़े ही सजाएं खावेंगे। तो पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपरम अपार दुख है, राम राज्य में अपरम अपार सुख। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर भी कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई देरी से समझते हैं। जो कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति कम की है अथवा देरी से की है, और जिन्होंने शुरू से भक्ति की है वो ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि सतोप्रधान भक्त है ना, तो सतोप्रधान ज्ञान ही उठावेंगे, तो उनको आगे नंबर में जाना है। कि तो बच्चे समझ गए हैं कि वो है आत्माओं का स्वीट साइलेंस होम, हम उस घर से यहां आए हैं। साइलेंस मूवी और टाकी, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है, परंतु उस मूवी का ज्ञान मार्ग से कोई ताल्लुक नहीं है। बाप ने समझाया है, मुख्य बात है अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो बस, और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे अर्थात आत्मा भी शरीर में निराकार, और तो कोई बात उठती नहीं। गोद में जाना, भाखी आदि, ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ लव की कोशिश करते हैं, परंतु वो भी दबा देना चाहिए। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ है, क्योंकि जानते हो ये शरीर तो सभी पतित हैं, तो पतित शरीरों से लव क्या रखना। भला आत्मा पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना, इस पुरानी पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। क्यों, कोई कारण होगा? क्योंकि पुरानी पतित दुनिया कहा ही उसको जाता है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ढेर के ढेर मनुष्य हैं, सब तमो प्रधान, उनकी वाइब्रेशन भी तमो प्रधान, वाचा भी तमो प्रधान, कर्मेंद्रियां और उनके कर्म भी तमो प्रधान। तो पांच तत्व भी तमो प्रधान बनते हैं। और पांच तत्वों से, तमो प्रधान तत्वों से ये दुनिया बनी हुई। तो ऐसी दुनिया में पावन शरीर कहां से आवेंगे? हाँ, आत्मा को पावन यहां बनना है। आत्मा पावन बनती जावेगी और शरीर सड़ते जावेंगे। आत्मा में ज्ञान के फोर्स से उमंग उत्साह बढ़ता जावेगा। तो इस पुरानी दुनिया में आत्मा को पावन बनना है। और पतित शरीरों का क्या होगा? पतित शरीरों का जो पांच पतित तत्वों के बने हुए हैं उनका विनाश हो जाएगा। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद करना और पावन बनना। परंतु आत्मा जब पवित्र है तो शरीर भी कैसा चाहिए? शरीर भी पावन चाहिए। परंतु वो शरीर, पावन शरीर, पावन दुनिया में ही मिलेगा। इस पतित दुनिया में तो मिल नहीं सकता। और ये शरीर तो पावन हो न सके। ये पतित पुराना शरीर है। आत्मा बल पावन बन जाए, क्योंकि आत्मा को तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस तो भाखी आदि की बात उड़ जाती है, बात ही नहीं। वास्तव में पतित शरीर को टच भी नहीं करना है। स्त्री हो चाहे मिटमाइट हो, कोई कोई भी टच नहीं करना है। ये आत्माओं से बात करते हैं, बात करने वाला आत्माओं का बाप है, ये समझने की बातें हैं। क्योंकि 63 जन्मों में शरीरों के साथ तो बहुत लटके हैं। सतयुग से लेकर के कलयुग तक भी कहेंगे कि शरीरों के साथ लटके। बल सतयुग त्रेता में वहां आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। कहेंगे वहां विकार में जाते नहीं हैं, कोई विपरीत कर्म नहीं करते हैं जिससे शरीर विकारी बने। वहां आत्मा भी विकारी नहीं होती है। कई बल्लवाचारी होते हैं जो दूसरे को अपना शरीर टच भी नहीं करने देते हैं। 21:69 की वाणी का दूसरा पेज। बल ये तो तुम समझते हो, उन बल्लवाचारी को फॉलो करने वालों की आत्मा कोई निर्विकारी नहीं होती है। हैं तो वो भी विकारी, वो भी एक बल्लवाचारी पंथ है। जो अपन को ऊंच कुल वाले समझते हैं, कोई को अपना शरीर भी टच नहीं करने देते हैं, ये नहीं समझते हैं कि हम अपवित्र हैं, विकारी हैं, समझते नहीं हैं कि ये शरीर भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। ये बातें तुम बच्चों को बाप आकर के सिखलाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है, जब आत्मा संपूर्ण पावन बने तो शरीर भी बदली करना पड़े। संपूर्ण पावन आत्मा से संपूर्ण पतित दुनिया में रह नहीं सकती। पतित शरीर में निवास कर न सके, आत्मा ऊंची स्टेज में उड़ जाती है, पावन शरीर तब बने जब पांच तत्व भी पावन बने। ज्ञान जल से आत्मा पावन बनती है, ज्ञान जल तो सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म ज्ञान जल से पावन बनती है और शरीर सूक्ष्म है या स्थूल है? शरीर तो स्थूल है, तो स्थूल शरीरों को पावन बनाने के लिए क्या चाहिए? स्थूल जल चाहिए, परंतु वो जल भी गर्म चाहिए या ठंडा चाहिए? है कैसा जल चाहिए? है गर्म जल चाहिए? ऐसा ठंडा जल चाहिए जो जाम हुआ पड़ा हो, ये जाम जल दुनिया में कहां रहता है? है उसका नाम है हिमालय पर्वत, हिमालय पहाड़, हिम से आच्छादित रहता है। हिम माने बर्फ, जाम जल, डिस्टिल्ड वाटर होगा या फिल्टर करना पड़ेगा? है डिस्टिल्ड वाटर होता है। हिमालय नाम किसका है? है शास्त्रों की भाषा में हिमालय किसको कहा गया है? पार्वती के बाप का नाम हिमालय रखा गया है। तो पार्वती का बाप कौन है? है ब्रह्मा बाबा। है हाँ हिमवान, वो तो क्वालिटी बताई कि उनकी बुद्धि में जो ज्ञान जल है वो जाम पड़ा हुआ है। क्या बहता नहीं है? कैसा जल है? जाम जल है। सागर अगर जाम हो जाए तो जाम हुए सागर का सागर मंथन हो सकेगा है? नहीं हो सकेगा। पहले तो बर्फ तोड़नी पड़े, छीर छीर करना पड़े, गर्मी जरूरी है, बाद में मंथन होगा, आलोड़न होगा, तो ब्रह्मा का ज्ञान जल कैसा है? ब्रह्मा कहो हिमालय कहो, उनकी बुद्धि में जो ज्ञान जल पड़ा हुआ है वो बहता हुआ ज्ञान जल है या जाम जल है? जाम है। ज्ञान यज्ञ जब शुरू आत हुई तो पहले पहले ब्रह्मा की बुद्धि से जो ज्ञान जल निकला वो शुद्ध ज्ञान जल था, डिस्टिल्ड वाटर था या शुद्ध था? है? शुद्ध ज्ञान जल था। उसको कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। विद माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी निकली, परंतु वो जाम जल था। आज भी कहते हैं शास्त्रवादी कि ब्रह्मा के मुख से जो वेद निकले उन वेदों को अगर कोई सामान्य मनुष्य पढ़े तो कुछ समझ में आवेगा है? एक शब्द भी समझ में आवेगा? नहीं आवेगा। तो ऐसे ही यज्ञ के आज में ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान जल निकला वो शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर था, वेदवाणी थी। उस वेदवाणी की बाद में व्याख्याएं हुई। एक एक शब्द को हिज्जे हिज्जे किया जाता है, तोड़ा जाता है। तब ज्ञान जल बनता है बहता हुआ। बर्फ ऊपर पहाड़ों पर और बहता जल कहां जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। तो बोला दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो ज्ञान जल भी चार अवस्थाओं से बदलता रहा, बदलते बदलते एकदम पानी की गर्म धारा बन जाती है। फायदा किससे होता है? ठंडे पानी से फायदा होता है? कहते हैं कि जब चोट लग जाती है, कोई को अंदर ही चोट लगे या बाहर की चोट लगे, घायल हो जाता है, तो दवाइयां उस समय ज्यादा अच्छा असर करती है
या जम हुआ पानी ज्यादा अच्छा असर करता है, बर्फ अच्छा असर करती है, तो इस दुनिया में मनुष्य भी और उनके शरीर सबसे जास्ती घायल कब होते हैं? संगम युग के आदि में घायल होते हैं, क्षत विक्षत होते हैं, या संगम युग के अंत में होते हैं? है? जब संगम युग का अंत आता है, जब आत्माएं ज्ञान जल से सात्विक बन जाती है, आत्माएं शरीर को छोड़ देती है, क्योंकि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा शरीर क्षत विच्छत हो जाते हैं, बुरी तरह से टूट फूट जाते हैं, उनमें से भी जो कम सजाएं खाने वाले शरीर हैं, वो कम से कम सजाएं खाने वाले, कम से कम क्षत विच्छत होने वाले शरीर, जिनके सुधरने की गुंजाइश होती है, जीवित रह जाने की गुंजाइश होती है, मृत प्राय से जीवनधारी बन जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? है? अरे कोई आठ बताता, कोई चार बताता, 4.5 लाख। 4.5 लाख में भी बहुत थोड़े से ऐसे हैं, जैसे कहीं भूकंप आते हैं, मान लो 2001 में भुज में गुजरात में भूकंप आया, तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया कोई कोई बच्चे बिल्कुल सुरक्षित निकले, उनको एक खरोंच भी शरीर में नहीं आई, उनकी संख्या परसेंटेज में बहुत कम होती है या ज्यादा होती है? बहुत कम होती है। तो 4.5 लाख में से सिर्फ 8 शरीर ऐसे निकलते हैं जो प्रकृति की मार से क्षत विक्षत भी नहीं होते, बल शरीर तो सभी मृत प्राय हो जावेंगे, परंतु वो पूरे क्षत विक्षत 8 शरीर नहीं होंगे, और बाकी को कुछ न कुछ सजा मिलेगी जरूर, कोई को कम कोई को ज्यादा। फिर भी वो शरीर येन केन प्रकारेण अंतिम विनाश में बर्फ में दब जावेंगे, जाम हो जावेंगे, सुरक्षित रह जावेंगे, और जो टूट फूट हुई है वो खलास हो जाएगी। ऊपर से जब आत्माएं नंबरवार उतरती जावेंगी और उन शरीरों में प्रवेश होती जावेंगी, उस समय नई दुनिया कहेंगे या पुरानी दुनिया कहेंगे? नई दुनिया कहेंगे। तो यही बात बताई कि नई दुनिया में आत्मा भी सतोप्रधान और शरीर भी सतोप्रधान होंगे। तो देखो, गायन भी है कि सतयुग में 5 तत्व भी पवित्र होते हैं, तो शरीर भी पवित्र बनते हैं। कहते हैं कि देवताएं पतित शरीर पर और पतित धरनी पर पांव नहीं धरते हैं। ये बुद्ध रूपी पांव हैं, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। उनों की आत्मा और शरीर पावन होते हैं, इसलिए वे सतयुग में ही पांव रखते हैं। थोड़ी भी पुरानी दुनिया होगी, मान लो एक जन्म बीत गया, तो उनको देवताएं नहीं कहेंगे। ये है पतित दुनिया। तो बाप मूल बात समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो। पहले पहले आत्मा पवित्र बनेगी या शरीर पवित्र बनेंगे? आत्मा चैतन्य है। आत्मा चैतन्य होने के कारण ज्ञान जल को धारण करती है। शरीर तो जड़ है। जड़ शरीर की पवित्रता जड़ पानी से ही होगी, परंतु संगम के आदि में जो पानी की स्थिति थी, अंत में भी जो आदि में, सो अंत में स्टेज बनेगी। आत्मा बाप को पुकारती है। शरीर का लौकिक बाप भी होता है, फिर भी हर आत्मा उस पारलौकिक बाप को याद करती है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, फिर भी सब किसे याद करते हैं? पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वो होता है शारीरिक बाप और वो होता है आत्माओं का बाप। जो शारीरिक बाप है वो सबका अलग अलग होता है। कहेंगे हद का बाप या बेहद का बाप? जो अलग अलग बाप होता है उसको क्या कहेंगे? हद का बाप। और शरीरों का एक बेहद का भी बाप है, वो है आदम, एडम, आदिदेव, प्रजापिता। वो वेद का शारीरिक बाप है। कहेंगे जीवदारियों का बाप, और वो है शरीरी बाप वेद का। कौन? परमपिता परमात्मा शिव। तो अशारीरिक बाप को भी याद तो जरूर करते हैं। भी क्यों लगा दिया है? दो भी चाहिए, क्योंकि उनसे ऐसा जरूर सुख मिला है जो याद करने बगैर रह नहीं सकते। कैसा सुख मिला है? है वो सुख सतयुग का है, त्रेता का है, द्वापर का है, कलयुग का है या संगम युग का है? संगम युग का ऐसा सुख मिला है जो याद करने बगैर रह नहीं सकते। भले इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को याद जरूर करते हैं। परंतु ये फिर उल्टी शिक्षा मिली है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मन हरेक में व्यापक है, तो मनुष्य मुझ पड़ते हैं। अब एक व्यापी है, या सर्वव्यापी है? एक व्यापी है। जब बुद्धि में बैठ जाए कि एक व्यापी है तो मुझने की दरकार है? हैं? नहीं है। जब एक व्यापी है तो वो एक जरूर बेहद का शारीरिक बाप है, वो अनेक नहीं हो सकते, सर्व नहीं हो सकते। सर्व में वो आत्माओं का बाप व्यापक नहीं हो सकता। मुझने की बात ही नहीं। और मनुष्य तो मनुष्य ही बनते हैं, ये भी एक भ्रांति और फैली हुई है। क्या कि मनुष्य कुत्ता बिल्ला पशु पक्षी कीट योनियों में भी जाता है? नहीं, ये सब भूले हैं, जो मनुष्यों की बहलाई हुई भूले हैं। तो ये भूले भी बाप ही आकर के समझाते हैं कि वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। फिर ये भ्रांति कैसे फैल गई? 84 लाख योनियों में तो जरूर नहीं जाती है, परंतु भांति भांति के जो मनुष्य हैं, 500-700 करोड़ मनुष्यों का ये झाड़ है, तो जो भांति भांति की योनियां हैं उनके अनुसार भाव स्वभाव संस्कार या व्यवहार तो धारण करते होंगे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो बाप आकर एक ही बार मन मना भव का मंत्र देते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी वाली बात खत्म करो बुद्धि से, और 84 लाख योनियों की बात भी खत्म करो। मैं कोई जानवर अवतार नहीं लेता हूं, कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेता हूं, उनका संग करने की कोई बात नहीं है। मैं तो एक व्यापी बनकर के आता हूं, और मनुष्य योनि ही सबसे ऊंची योनि है, और मनुष्य योनि में भी जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य है उन सब में व्यापक होकर नहीं आता हूं, मैं तो सिर्फ एक व्यापी हूं। तो मन मना भव का मंत्र देते हैं, क्या कहते हैं? मेरे मन में समा जा। कहने वाला कौन है? है शिव। उसको मन है? है उसको मन है? है वो मन है या अमन है? वो तो सदैव ही अमन है। तो ये फिर कौन कहता है, कैसे कहता है मेरे मन में समझा? मैं और मेरा दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? मैं अलग और मेरा? मैं कहने वाला कौन? शिव ज्योति बिंदु। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। वो आत्मा कहती है मैं, और उसका मेरा कौन है? जरूर कोई मेरा है जिस्मानी। कौन है? जिसको मेरा कहते हैं वो सर्वव्यापी नहीं है, वो 84 लाख योनियों में व्यापक नहीं होता है, वो एक ही है। वो मन भी है बुद्धि भी है और मूल बुद्धि में भरे हुए 84 जन्मों के उस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में संस्कार भी है। तो कहते हैं मेरे मन में समा जा, मन वो अव्वल नंबर ब्रह्मा है। मन क्या है? मन है ब्रह्मा। बुद्धि क्या है? बुद्धि है तीसरा नेत्र रूपी कार्यकर्ता, मन है पहला कार्यकर्ता, और विष्णु है तीसरा कार्यकर्ता परिवर्तन शक्ति। तो ये नहीं कहा तीसरे कार्यकर्ता में समा जा, ये नहीं कहा बुद्धि में समा जा, क्या कहा? मन में समा जा। बुद्धि में समा जा क्यों नहीं कहा? अरे बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? हैं? वो तो स्वयं ही बाप शिव है। अगर ये कहें कि मेरी बुद्धि में समा जा तो वो तो 5000 साल ऊपर बैठा रहेगा। तो बुद्धि में समा जाने वाले भी कहां बैठ जाएंगे? सब 5000 साल परम धाम में बैठते रहेंगे। ये नहीं कहा बुद्धि में समा जा, मेरी संस्कार शक्ति में समा जा, क्या कहा? मेरे मन में समा जा। तो मन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं मुख्य रूप से टोटली कितनी हैं? पांच आत्माएं हैं जो विष्णु की चार भुजाओं के रूप में दिखाई जाती हैं, और उन चार भुजाओं को संचालन करता एक चलाने वाला है। पांचों ही पहले मन का रूप है, चंचल स्वरूप है। जब संपन्न स्टेज होती है तो वो पांचों मन बदल करके क्या बन जाते हैं? विष्णु बन जाते हैं। मन में विष मात्र रहता है या नहीं रहता है? नाम मात्र को विष नहीं रहता। मन के रूप में पार्ट बजाने वाला पहला नंबर कौन है? कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हो गए, प्रजापिता ब्रह्मा। तो बोला कि बाप एक ही बार आकर के मन मना भव का मंत्र देते हैं, ये महामंत्र है। तो महामंत्र का अर्थ भी चाहिए, ये सिर्फ मंत्र नहीं है, क्या है? महामंत्र है। तो उसका अर्थ भी महान होगा, ये छोटा मोटा होगा? महान अर्थ है। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, बस आत्मा समझो। इसलिए वेदों में एक ऋचा आई है, आत्मा क्या है? वेद कब बने? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कब बने? द्वापर में बने। जब द्वैतवादी युग शुरू हुआ तो वेद बने, शास्त्र बने। तो उन वेदों में ही लिखा हुआ है, एक ऋचा में ये आया है, मन रेव आत्मा। क्या? मन ही आत्मा है। बुद्धि ही आत्मा है, संस्कार शक्ति ही आत्मा है, ये नहीं कहा। क्या कहा? मन रेव आत्मा। तो अपन को आत्मा समझो कि मैं आत्मा मन स्वरूप ब्रह्मा का रूप हूं, मुझे ब्रह्मा सो क्या बनना है, विष्णु समान बनना है, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने जो कुछ शास्त्र आदि बनाए हैं वो शास्त्र आदि देवताओं को तो बनाने ही नहीं है कि बनाने हैं, है? क्यों नहीं बनाने हैं, है? नहीं, इसलिए नहीं बनाने हैं कि देवताओं का मन अमन हो जाता है। द्वापर युग जब शुरू हुआ तो मन चलायमान हुआ, सत्य को त्रेता में मन चलायमान नहीं होता, तो जो चलायमान होता है उसको कहा जाता है मन। अगर चलायमान नहीं है, अमन है, तो या तो देवता है या तो भगवान है। भगवान का मन चलायमान होता है नहीं, न देवताओं का मन चलायमान होता है, मनुष्यों का मन चलायमान होता है, इसलिए उनका नाम ही क्या रखा, मनुष्य। तो देवताओं को शास्त्र आदि कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि उनको मन चलायमान होता ही नहीं। देवताओं को कोई ज्योतिषी आदि भी नहीं कहा जाता है, क्या? क्यों? भविष्य की बातों की गणना करें, पास्ट की बातों की गणना करें, पास्ट के जीवन को, फ्यूचर के जीवन को देखें, ऐसा उनको कोई ज्योतिषी भी नहीं बनना है, वो तो देवता ही है और कोई नाम ही नहीं। देवी देवताएं हैं क्योंकि दिव्य आत्मा है, दिव्य शरीर हैं, देवताई गुण वाले हैं, पवित्र आत्माएं हैं। अभी बाप आकर फिर से तुमको ऐसा पवित्र देवता बनाते हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। क्या है अहम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। बुत बनाने वाले होते हैं ना, मनुष्य की सूरत देख करके झट बुत बनाई देते हैं, रेखा चित्र खींच देते हैं, चित्रांकन कर देते हैं, चित्र देखने से ही मनुष्य की पहचान हो जाती है या नहीं? हो जाती है। मूर्ति देखने से ही पहचान हो जाती है, तो मनुष्य का सूरत देख झट उनका बुत बनाए देंगे, जैसे कि वो जीता जागता सामने बैठा है, ऐसे बुत बनाए देते हैं। तो अभी बाप तुमको क्या बनाते हैं? बुत बनाते हैं या चैतन्य बनाते हैं? बाप तो तुमको चैतन्य देवता बना देते हैं, जड़ बुत नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चैतन्य देवता बनाए देते हैं, वो तो जड़ बुत हो जाता है। यहां बाप तुमको कहते हैं कि तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा चैतन्य बनना है। अब कैसे बनेंगे, है? मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे, है? मन में जो संकल्प विकल्पों की सरणी चलती है, उन संकल्प विकल्पों को کیا کریں ہیں؟ وہ سنکلپ وکلپ کی لہر جو چلتی رہتی ہے اس کو جام کر دیں. جام کرنے کا مطلب نل نہیں, کیا کر دیں؟ استھر کر دیں. تو تم منوشی سے دیوتا بن جاویں گے. من ایکاگر کرنے کی بات ہے تو کیسے ایسے چیتنیہ میں لکشمی نارائن بنیں گے؟ کیا جواب آیا؟ یہ جو پڑھائی ہے وہ راج یوگ کی پڑھائی ہے, اس میں راز بھرا ہوا ہے. چنچل من کو ایکاگر کیسے کیا جائے, یہ راز بھرا ہوا ہے. وہ سادھو سنیاسی, وہ گرو لوگ تو شریروں کی ایکاگرتا سکھاتے ہیں, آسن سکھاویں گے, پرانایام سکھاویں گے, لیکن باپ کیا سکھاتے ہیں؟ یہ دیہ کے یوگ نہیں سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ من روپی آتما کو کیسے استھر کیا جائے, اس بات کی یہ پڑھائی ہے. اور یہ پڑھائی پیورٹی دھارن کرنے سے آئے گی. جتنا اپن کو پوتر بناتے جاویں گے, جتنا اونچی اسٹیج میں اپن کو پوتر بناویں گے, اتنا یہ پڑھائی کی پرارب پراپت کرتے جاویں گے. یہ اسکول ہے منشی سے دیوتا بننے کا. کیا منشی کو جس کا من چلائے مان ہے اس کے من کو ایکاگر کر کے کیا بنا دیتے ہیں؟ دیو گنداری بنا دیتے ہیں. وہ تو بت بناتے ہیں, ان بت بنانے والوں کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے. ہو بہو وہی شکل بنا دیں گے. کیا آدمی کو سامنے کھڑا کر دو اور وہ ایسا ریکھا چتر ایک دو منٹ میں کھینچ دیں گے چہرے کا کہ وہی ویکتی ہو, دیکھنے ماتر سے ہی وہی ویکتی یاد آ جائے گا. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آرٹسٹ. ایسا آرٹ ان کے اندر ہے, پرنتو وہ تو جڑ بت بناتے ہیں. اور باپ کیسا آرٹسٹ ہے؟ چیتنیہ چتر بناتا ہے اور ایک نہیں بناتا ہے. کتنے بناتا ہے؟ ڈھیر کے ڈھیر بناتا ہے. وہ آرٹسٹ تو تھوڑے چتر بناتے ہوں گے, وہ بھی جڑ چتر ہے. تو اس میں ہو بہو کی بات نہیں ہے, یہ تو جڑ چتر ہیں. وہاں تو تم نیچرل چیتنیہ بنیں گے. پانچ تتو کا چیتنیہ شریر ہوگا, یہ تو جڑ چتر منشیوں کا بنایا ہوا ہے. کون سا؟ یہ لکشمی نارائن جو چتر ہے اس کا بنایا ہوا ہے, منشیوں کا بنایا ہوا ہے. اور وہ چیتنیہ چتر ہوں گے لکشمی نارائن یا لکشمی نارائن جیسے, وہ کس کے بنائے ہوئے ہوں گے؟ باپ کے بنائے ہوئے چتر ہیں. یہ جڑ چتر ہو بہو تو نہیں ہو سکتے. جو لکشمی نارائن کا چتر ہے ستیگ میں جیسے لکشمی نارائن ہوں گے یا سنگم یوگ میں جیسے ان کے چتر ہوں گے جیسا ان کا ہو بہو چہرہ ہوگا ویسا ہی چہرہ ہے کیا یہ؟ وہ تو ہو نہیں سکتا, ہو بہو نہیں ہو سکتا, کیونکہ دیوتاؤں کا فوٹو تو نکل ہی نہیں سکتا. سمجھو, ارجن کو چترگوج کا ساکشاتکار ہوا, اب اس چترگوج کا جس کا ساکشاتکار ہوا اس کا کوئی فوٹو نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. وہ تو جس نے ساکشاتکار کیا وہ ہی جانے, دوسرا کوئی نہیں جان سکتا. کہیں گے ہم نے ایسا دیدار کیا, چتر تو بنا ہی نہیں سکیں گے, نہ وہ خود بنا سکیں گے نہ کوئی اور بنا سکے گا. خود ایسا تب بنیں گے جب باپ سے نالج لے کر کے پوری کریں گے, تب ہو بہو کل پہلے مثل بنیں گے. تو دیکھو یہ کیسا قدرتی ونڈرفل ڈرامہ ہے. باپ بیٹھے قدرتی باتیں سمجھاتے ہیں, منشیوں کو تو یہ باتیں خیال میں بھی نہیں رہتی ہیں کہ منشی سے دیوتا کیسے بنیں گے. آتما پوتر بن جائے گی گیان سے, وہ تو ٹھیک, پرنتو شریر کیسے بنیں گے؟ گیان سے شریر پاون بن جائیں گے کیا؟ پھر تو کہیں کیا کہ گنگا اسنان کرنے سے آتما اور شریر دونوں پوتر بن جائیں؟ تو انہوں نے تو شریر کی بات اٹھائی لی, واستو میں ہے آتما اور شریر دونوں کو پوتر بننے کی بات. تو منشیوں کو یہ باتیں خیال میں نہیں آئیں گی, باپ ہی آ کر کے بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ کیا آتما پاون تو بنے گی, آتم کی سمرتی سے ज्ञान से, परंतु शरीर कैसे पावन बनेंगे? वो तथाकथित ब्राह्मणों ने तो व्याख्या दे दी, ऊपर से आत्मा स्टार मिसल आवेंगी और नीचे क्या बन जावेंगी? आते ही प्रिंस प्रिंसेस बन जावेंगी. अब ऐसा हो सकता है क्या? है ये नहीं हो सकता. ये तो बाप ही बैठ समझाते हैं क्या कि मनुष्य से देवता और देवताई शरीर कैसे बनेंगे. ये बाप के सिवाय और कोई नहीं समझा सकता. ये भी एक बाप की पहचान पहचान है. क्या ये ज्ञान बाप ही आकर के बता सकते हैं? बाप कुदरती बातें बैठ बताते हैं, नेचुरल बातें बताते हैं. मनुष्य तो अननेचुरल बातें बताते रहते हैं. मनुष्य को तो ये बातें ख्याल में नहीं रहती, उन्होंने आगे जाकर के माथा टेकते हैं, समझते हैं ये देवताएं राजी करके गए हैं. कब राजी करके गए हैं सो तो पता ही नहीं है, और ये देवताएं फिर कब आवेंगे कुछ भी ख्याल तो नहीं चलता. अभी तुम तो जानते हो ये सूर्यवंशी ये चंद्रवंशी जो हो करके गए हैं वो हू बहू फिर से ऐसे बनेंगे जरूर, और इस नॉलेज से ही बनेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है. ओम शांति.